ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सब कैसे लग रहे हैं? श्रवण कीर्तन शिविर अच्छा लगता है? सब सुखी है? कोई दुखी है? कोई दुखी नहीं है? भगवान का द्वार का धाम में कोई दुखी नहीं रहेंगे। तो कल समापन होगा ना? कल तो और कुछ दिन करेंगे, बंद नहीं कर। किराया कितना पंडाल का? वो लालित गोविंद है नहीं, और सब पैसे तुम यहाँ नहीं है। हे हे नहीं, अच्छा होगा यदि हम पूरा जीवन में हम ऐसे एक साथ रहेंगे और श्रवण कीर्तन करेंगे ऐसे है। और इसके बाद सब शरीर त्याग करेंगे और सब वहाँ वहाँ करेंगे, एक ही होगा। तो यही हमारा प्रस्ताव है, प्रतिदिन श्रवण कीर्तन कम करना। कैसे संभव? सबका ऑफिस जाना, दुकान जाना, पैसा कमाना, नहीं वो सब बंद करो, फार्म जाओ। प्रतिदिन श्रवण कीर्तन कैंप होते हैं, इसलिए वो ही स्थापित है। और साथ साथ कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य भी कुछ होते नहीं, वो गमछा बिक्री होते वहाँ, हैंडलूम होते। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद उसी प्रकार ग्रामीण समुदाय स्थापना करना चाहते। बहुत कारण है, मुख्य है, जिससे भक्तों काफ़ी समय में लेंगे श्रवण कीर्तन करने के लिए। काफ़ी समय तो समय कभी भी काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि 24 घंटे भी काफ़ी नहीं है। लेकिन जिससे वो अनमोल मानव जन्म तो विफल से विनु कृपण जाना दूर जाना वैसे नहीं चलेगा। जिससे सबका दुर्लभ मानव जन्म पूरा तन्मय हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने में, श्रवण कीर्तन यही सब। सबके लिए निमंत्रण है। सब पूरी तैयार नहीं है और बाहर से कुछ सहायता भी करने चाहिए। और स्थिति प्रचार वो भी जरूरी है, उसका जरूरत भी है, दोनों जरूरत है। मंदिर निर्माण करना, पुस्तक वितरण द्वार द्वार, ग्राम ग्राम से कृष्ण भक्ति प्रचार करना। और श्रीनिवास सेवानंद दोपहर मेरे पास आए और मुझसे अनुरोध किया, जिससे मैं उनकी पद यात्रा के बारे में कुछ कहूँ। वो अभी वहाँ है नहीं? हाँ, श्रीनिवास सेवानंद तेलंगाना में पदयात्रा चलाते। पदयात्रा मतलब संकीर्तन पदयात्रा, पॉलिटिकल पदयात्रा वो भी होती है। पदयात्रा संकीर्तन पदयात्रा करते हैं तेलंगाना में। तो कैसे लगता है यहाँ वातावरण द्वारका? तो ज़्यादा गर्म नहीं है? आप जो भोपाल से आए हैं और तेलंगाना से आए, वहाँ पर बहुत बहुत यहाँ से बहुत गर्म है नहीं? कोई विदेश से आया अभी? नहीं। तो अगर कोई यूरोप अमेरिका से आएंगे इसी मौसम में तो ऐसे लगेंगे, ओ यहाँ पर द्वारका में बहुत बहुत गर्म है। लेकिन जो मध्य प्रदेश तेलंगाना से आते हैं लगता है हाँ हाँ काफ़ी ठंडा है यहाँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत 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 गर्म पड़ते हैं, 45 होते हैं ऐसा प्रतिदिन। और ओ वहाँ पर भी बहुत गर्मी में पदयात्रा करते हैं, गांव से गांव प्रचार करते हैं, शोभा यात्रा करते हैं। तो वो भी जरूरी है पदयात्रा। कभी कभी जब नागर से द्वारका, आप कहते हैं साल में एक बार नहीं, Jamnagar se Dwarka Padyatra Murlida Prabhu aur Jamnagar ke bhakton karte hai. To wo bhi jaruri hai. Kitna gaon hai Bharat mein? Kai lakh hai nahi? Kitna hai? Koi bol sakte hai? School mein kya sikhte hai aap log? Kitna hai? Kai lakh hoga nahi? 8 lakh. 8 lakh gaon hai. To sabhi Chaitanya Mahaprabhu ne kaha Jato Nagar Adi Gram. Sab gaon mein Krishna Bhakti Prachar hone chahiye. To isliye Padyatra bahut jaruri hai. Ek aur upay hai, adhunik upay, YouTube. Wo bhi hai. To sab anchalik bhasha mein prachar karna chahiye. Aap Gujarati mein karte hain, Jamnagar se. उसके बारे में और भी प्रचार करना चाहिए क्योंकि बहुत है गुजराती केवल गुजरात में नहीं है अफ्रीका में कनाडा में अमेरिका इंग्लैंड में जो अपनी भाषा में कृष्ण कथा सुनने चाहते हैं तो गुजराती में प्रचार करें और कनाडा भाषा में अनंत वासुदेव आप नहीं करते वो कौन करते हैं नारायण पद्मनाभ करते हैं कनाडा भाषा में हिंदी बहुत वक्ता है इसकोन के YouTube पर Polish भाषा में वो गोपालाचार्य कहते हैं सेलम से और तमिल आप सेलम से आप प्रचार करते हैं तो खास आंचलिक भाषाओं में प्रचार होने चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा प्रचारक इस्कॉन और इस्कॉन के अलावा सब प्रचारक इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा करते हैं तो अलग अलग भाषाओं में प्रचार करने चाहिए कृष्ण भक्ति प्रचार राजस्थानी में आप कर सकते हैं कोई है अरविंदाक्ष आप राजस्थानी में प्रचार कर सकते हैं सूरती भाषा मिश्रित ऐसा होगा नहीं तो शुद्ध राजस्थानी नहीं जानते लगता है और पुस्तक वितरण के बारे में हम बहुत सुनते हैं पुस्तक लिखना भी है वो भी जरूरी है जैसे राधिका रमन नया पुस्तक वो सब श्लोक का संकलन अभी प्रकाशन किया और नारायण श्रीनिवास श्रीदास श्रीनिवास और गोकुल चंद्र प्रभु की पुस्तक हु इज सुप्रीम वो अलग अलग भाषाओं में अनुवाद है केशवानंद प्रभु तो नया नया पुस्तक लिखते रहते तो वो भी एक सेवा है बहुत प्रकार की सेवा है कृष्ण भक्ति प्रचार करने में सेवा करने चाहिए महाभारत के माध्यम से प्रचार करना जय दामोदर प्रभु करते हैं हिंदी भाषा में इंग्लिश में भी अगर हो तो ऑडियंस होगा बहुत क्या 20 साल के पहले मैं रशिया में था और महाभारत के ऊपर वो लेक्चर देता था वो भक्तों सुनने चाहते थे क्योंकि वो स्टोरी जो है महाभारत में बहुत रुचिकर है ना वेरी इंटरेस्टिंग और डाइडैक्टिक भी है मतलब शिक्षार्थ शिक्षार्थ के कहानी है तो ऐसे और आपका नंदग्राम में वो लेखिका नहीं है वो पुस्तिका मिलते हैं शामेश्वरी माता जी तो भगवत दर्शन के लिए भी लिखना है आपके खुद की अनुभूति क्या है कृष्ण भक्ति में कैसे मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया बहुत बहुत प्रासंगिक विषय भी है जिसके वो भगवत दर्शन में वो बैक टू गॉडहेड मैगजीन में श्रील प्रभुपाद जब पहले वो भगवत दर्शन बैक टू गॉडहेड मैगजीन चलाया तो सब उसी समय के पॉलिटिक्स के बारे में कुछ लिखते थे और न्यूज़पेपर से कुछ विषय लेके उसके ऊपर लिखते थे और शास्त्र का परिप्रेक्ष्य से सब कुछ विचार किया तो ऐसे भगवत दर्शन के लिए लिखना है प्रबंध लिखना है जरूरी है और प्रासंगिक विषय और शास्त्र आप सब श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं और पाठ करने से आप प्रेरणा मिलती है नहीं आपके मन में, तो जो प्रेरणा आता है उसके बारे में कुछ लिखिए, शास्त्राधारित वो सब कुछ जो मन में आता है आप लिखिए और भगवत दर्शन में आप प्रकाशन कीजिए। बहुत कुछ करना है भगवान कृष्ण की सेवा में, सबके लिए अवसर है कुछ ना कुछ करना। तो कल दीक्षा अनुष्ठान होगा इंशाल्लाह, यदि भगवान कृष्ण की इच्छा और अनुमति हो इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा है ऐसे बोलना, मतलब यदि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हो, मतलब ऐसे कहना कि कल मैं ऐसा करूँगा ऐसे नहीं कहना चाहिए, इंशाल्लाह ऐसे बोलना चाहिए यदि भगवान अनुमति देंगे। क्योंकि हम ऐसे बोल सकते, हम प्लानिंग कर सकते, लेकिन मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस, सब कुछ भगवान का हाथ में है, हम स्वतंत्र नहीं है। ऐसे कहना इंशाल्लाह उससे हम स्वीकार करते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, नियंत्र है, ईश्वर है, ईश्वर अल्लाह ठहरना ईश्वर ईश्वर हम वो कहते नहीं। ईश्वर का मतलब क्या है कि वे नियंत्रण है और हम नियंत्रित है, कि मैं स्वतंत्र हूँ वैसे विचार करना सब गलत है। तो कल दीक्षा अनुष्ठान होगा और उसके बारे में कुछ कहना है, बहुत गंभीर विषय है गुरु और शिष्य संबंध, गंभीर है और गंभीर गुरु गुरु गंभीर दोनों शब्द का लगभग एक ही अर्थ है, गुरु विषय है और उसके विपरीत है लघु विषय। तो ऐसे गुरु है जो वास्तव में गुरु नहीं है, लघु है, लघु का मतलब हल्का, और वो हल्का जैसे दीक्षा प्रदान करते। जैसे बहुत साल के पहले मैं बांग्लादेश में था चंद्रनाथ यात्रा में, चट्टग्राम के पास सीताकुंड एक प्राचीन शिव क्षेत्र है वहाँ, और साल में एक बार एक महान मेला आयोजित होते हैं, तो हम वहाँ थे और श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक वितरण करने के लिए। ये तो कितने साल के, 35 साल के पहले ऐसी की बात, और स्पीकर से पूरे हम ऐसे टेबल लगाए पुस्तक वितरण करने के लिए, और पूरे दिन में हम वो स्पीकर से सुना था कि स्वामी अमुक स्वामी दीक्षा प्रदान करते हैं और सब हिंदू का दीक्षा लेना चाहिए, जीवन में दीक्षा गुरु गुरु आश्रय लेना है, तो सब जो दीक्षित नहीं है तो गुरु के पास जाकर दीक्षित हो जाओ, ऐसा है। तो गुरु की क्या योग्यता है तो शिष्य तो नहीं देखते, और गुरु की क्या शिक्षा है तो नहीं देखते, और गुरु शिष्यों की योग्यता भी नहीं देखते। तो जैसे चुनाव है, आ जाओ भाजप या कांग्रेस वोट दे दो ऐसे, तो यही गुरु वो गुरु के पास जाओ वो सबसे अच्छा है। तो ऐसे गुरु शिष्य संबंध संबंध नहीं है। जैसे यदि आप रास्ते में एक दूसरे व्यक्ति से मुलाकात करते, हाय हाउ आर यू, ओके बाय बाय, ऐसा तो कुछ नहीं होते, उसमें संबंध नहीं होते। जीवन में एक बार मुलाकात होते और हेलो हरि बोल बाय बाय ऐसे ही बोलते, तो कोई उसमें कोई संबंध तो नहीं है। तो उस प्रकार यदि शिष्य तो गुरु के पास एक बार जाकर तथाकथित दीक्षा लेते और उसके पहले और पश्चात भी कुछ भी शिक्षा नहीं लेते, तो वो गुरु शिष्य संबंध वो संबंध नहीं है, खाली नाम में है, वो हल्का होते। गुरु होने चाहिए, शिष्य भी गुरु होने चाहिए, अर्थात भारी। वो संकल्प जो करते हैं वो बहुत गंभीर ही है, नहीं? गुरु शिष्य यदि हल्का हो, यदि गुरु ना हो तो शिष्य वास्तविक शिष्य तो नहीं है। तो आंध्र प्रदेश से आए हुए भक्तों मुझसे कुछ पूछे ये गुरु शिष्य संबंध के बारे में, आश्रय लेने के बारे में। दीक्षा लेने के पहले आश्रय लेना है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में वैदिक साधना भक्ति के 6-7 अंग में पहले 4 है गुरु और शिष्य संबंध के बारे में है। गुरु पदाश्रयस्तस्मात् कृष्ण दीक्षानुशिक्षणम् विश्रम्भेन गुरु सेवा। तो पहला है गुरु के पद में आश्रय लेना और उसके पश्चात दीक्षा लेना और शिक्षा लेना और विश्रम्भेन गुरु सेवा अर्थात स्नेह से गुरु सेवा करने है। तो पहले आश्रय लेना, आश्रय लेने का क्या मतलब है? आश्रय लय भजे थारे कृष्ण नहे त्याजे और सब बड़े आकारण। आश्रय के बारे में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो आश्रय लेके कृष्ण भजन करते हैं वो भक्त कृष्ण को त्याग नहीं करते और सब जीवन व्यतीत करते मर जाते और उनके जीवन में कुछ अर्थ नहीं था। आश्रय शरण ये दोनों शब्द का एक ही अर्थ है, समपर्याय। गीता में भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध उपदेश है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और सब कुछ और सभी प्रकार के धर्म परित्याग करके केवल मेरे चरण में शरण ले लो। तो यदि केवल कृष्ण के चरण में शरण लेना है तो गुरु के चरण में शरण लेने का क्या प्रश्न है? मामेकम कृष्ण कहते हैं, तो गुरु यही वचन में गुरु कहाँ आते हैं? मामेकम कृष्ण कहते, तो कैसे शरण लेना है? तो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, वो पहले कहते एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजा शयो विदुः, कि ये ज्ञान जो मैं कृष्ण अर्जुन तुमको कहता हूँ वो ज्ञान परंपरा राजाशी परंपरा में से आया था, अभी महान काल का प्रभाव से वो नष्ट हो गया है। और भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शिनः। तो सामान्य विधि है कि परमार्थिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी के पास जाना है और परिप्रश्न करना है, अर्थात अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, परमार्थिक विषय के बारे में पूछना है गुरु से, गुरु से पूछना नहीं। तो मुझे क्या करना है, मुझे बहुत समस्याओं में गिल गया था, मुझे वो क्या स्वस्थ ठीक नहीं है, क्या इलाज लेना है, वो उसी प्रकार प्रश्न पूछना नहीं गुरु से परमार्थिक विषय पर। और गुरु की सेवा करने चाहे उपदेक्षंती, उपदेक्षंती शब्द का अर्थ है कि तत्वदर्शी जन परंपरा वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा प्रदान करते हैं। तो कैसे कृष्ण के शरण लेना है, गुरु का माध्यम से, यही पद्धति भगवान श्री कृष्ण स्वयं सृष्टि किए। अन्यत्र भगवान कृष्ण कहते हैं आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत कर्हि चित्तम् अर्थ बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव माया गुरु, कि इसी प्रकार आचार्य को देखना है मुझसे अभिन्न। आचार्य मां भी जाने, और कभी भी आचार्य का अवमान अपराध नहीं करना, और कि गुरु सामान्य व्यक्ति है ऐसा विचार नहीं करना, और द्वेष करना नहीं गुरु को, क्योंकि गुरु सभी पूर्वाचार्यों के प्रतिनिधि है। तो भगवान कृष्ण के शरण में आना का उपाय है गुरु का माध्यम से। और गुरु अकेला नहीं रहते, गुरु एक वैष्णव है, वैष्णव गुरु न सद वैष्णव स्वपच गुरु हो। गुरु होने के लिए क्या योग्यता है, तो वैष्णव होना चाहिए। सरकार मनो विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न सद वैष्णव स्वपच गुरु हो। तो उत्तम कुल में उद्भूत ज्ञानी कर्म और सभी प्रकार के वैदिक कार्यकलापों में निपुण जो है, यदि अवैष्णव है तो अयोग्य है गुरु होना, और जो वैष्णव है तो स्वपच सबसे नीच कुल में उद्भूत होते हुए भी तो गुरु होते, वैष्णव तो गुरु ही है। वैष्णव और गुरु शब्द तो दोनों शब्द तो एक ही है, सब वैष्णव तो गुरु है। हम सब वैष्णव को मानते हैं कि सब हमारे गुरु है, क्योंकि गुरु कौन है जो परम सत्य को जानते हैं। शब्दे परेत निष्णातम प्रमाण्यो प्रमाण्य पुषमाश्रयम, जो शब्द वैदिक शब्दों में पूरा निमग्न है, शास्त्रीय ज्ञान में पूरा निमग्न है, और जो पूरा आश्रय लिया है भगवान कृष्ण के चरण में, वो तो गुरु है, वो तो वैष्णव है। तो सब वैष्णव गुरु है, और कोई है वैष्णव जो औपचारिक रूप से गुरु पद ग्रहण करके दूसरों को वैष्णवी दीक्षा प्रदान करते हैं। तो आश्रय लेना क्या मतलब है, क्या करना है? तो आश्रय तो मानसिक भावना है, इसी प्रकार सोचना है कि असंख्य जन्मों के पश्चात कृष्ण से दूर रहने के पश्चात मैं अवसर मिलता हूँ कृष्ण भक्ति करने की, और अभी मेरा अभिप्राय है यही जीवन पूरा समर्पित करना भगवान श्री कृष्ण की सेवा में गुरु का माध्यम से। हम सीधे भगवान के पास नहीं जा सकते, गुरु माध्यम है जो हमारी सेवा ग्रहण करते हैं और इनके गुरु को अर्पण करते, और इनके गुरु को अर्पण करते, इस प्रकार परंपरा में से वो सब वो सेवा भगवान श्री कृष्ण स्वीकार करते। तो दिव्य ज्ञान श्री कृष्ण से आते हैं, कृष्ण हई ते चतुर्मुख हई कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा होते नारदेरमति नारद होते व्यास मध्वकहे व्यासदास। इस प्रकार भगवान कृष्ण चतुर्मुख ब्रह्मा के हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान संचार किया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि है और ब्रह्मा नारद जी को बताया वही ज्ञान और नारद व्यास को व्यास मध्वाचार्य को और इस प्रकार परंपरा में से ऊपर से वो ज्ञान आते हैं और हमारी सेवा हम परंपरा में से नीच से हम ऊपर तक श्री कृष्ण के चरण तक हम अर्पण करते हैं। तो इस प्रकार बुद्धि वैसे होने चाहिए, दाम्भिक नहीं होने चाहिए कि मैं खुद का बल से मैं भक्ति करती हूँ, ऐसा ही नहीं। आश्रय लेना क्या है, वो विनम्र भावना कि मैं अति तुच्छ अति पतित हूँ, मैं स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और गुरु कृपा गुरु से शक्ति मिल के मैं भक्ति पथ पर प्रगत हो सकता हूँ, नहीं तो संभव नहीं होगा। तो ऐसे आश्रय लाने और आश्रय मतलब आश्रय से हम सुरक्षित होते माया का प्रभाव से, जैसे लक्ष्मण रेखा है ना, जब तक हम रेखा के अंदर में रहते हैं तब तक कोई भय नहीं है, वो बाहर जाने तो सत्यानाश होते। तो वो आश्रय लेना तो केवल मानसिक भाव नहीं है, तो वो संकल्प भी होते है कि गुरु के सब उपदेश में पालन करूँगा, वो उसी प्रकार हम आश्रित होते हम रक्षित होते। और यदि हम पालन नहीं करते वो लक्ष्मण रेखा के बाहर जाना जैसे है, तो उसी प्रकार हम आश्रय मिलते रक्षा मिलते हैं। दूसरी शब्द में वो आश्रय लेने वो दीक्षा के पहले वो सगाई जैसे है, पूरा पक्का नहीं है लेकिन लगभग। वैसे ही है। तो दूसरा प्रश्न है कि यदि हम दीक्षा नहीं लेते तो हम खाली माला करते हैं सेवा करते हैं वो सब, तो हम भगवान के पास नहीं जाएंगे? यदि हम दीक्षा नहीं लेंगे और माला सेवा वो सब करते हैं तो वैकुंठ का द्वार बंद रहेगा क्या हमारे लिए? भगवान कृष्ण क्या इतना द्वेष करते हैं कि कोई जो गुरु के आश्रय नहीं लेते तो गोलोक नहीं जा सकते? वो सामान्यतः तो वैसे ही है, क्योंकि आश्रय लेने वैसे ही है। भगवान कृष्ण ऐसे वो पदार्थी प्रदान दिया है, तो यदि हम कृष्ण के आश्रय में आना चाहते हैं तो इनके भक्तों के आश्रय में आना चाहिए। तो अगर कोई नवीन है भक्ति में और आश्रय ले है दीक्षा नहीं लिया या आश्रय लेने के लिए तैयार हो रहा है और अचानक अकाल मृत्यु होते हैं, तो वो व्यक्ति तो पुनर्जन्म में अवसर मिलेंगे भक्ति करना। ऐसा तो नहीं है कि जो कीर्तन करते श्रवण करते तो नरक जाएंगे, वैसे तो नहीं होते। परंतु सामान्य विधि है कि भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए तो प्रवेश करने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए तो गुरु परंपरा के आश्रय लेने से जाना है। यदि हम अन्याय से भगवान का धाम में जाना चाहते हैं तो नहीं चलेगा। तो ये सब विषय विशाल ही है, और गुरु तत्व समझना कठिन भी है, क्योंकि हम प्रतिदिन हम कीर्तन करते हैं साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्राय रुक्तस्तथा भाव्यत एव सभी किंतु प्रभया प्रिय एव तस्य गो वंदे करो श्री चरणारविंदम। गुरु तो भगवान जैसे ही मानना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं तो गुरु तो सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति है और भगवान से अभिन्न है, वो ही भी है। गुरु और समान भगवान और सामान्य व्यक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। नहीं, वो हमारा प्रचार है नहीं कि कोई साधारण व्यक्ति भगवान नहीं हो सकते। और सब जो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ कृष्ण के अलावा, सब जो ऐसे ही बोलते हैं तो बड़ा शैतान है। तो इसी प्रकार गुरु भगवान से अभिन्न मानना चाहिए, क्योंकि भगवान की प्रतिनिधि है, वो स्वयं भगवान नहीं है। सृष्टि स्थिति प्रलय का कार्य गुरु तो नहीं करते। गुरु तो सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में विराजमान नहीं है। कृष्ण की कृपा से तो शिष्यों के हृदय में कुछ प्रवेश कर सकते हैं। जैसे सुखदेव के बारे में ऐसा वो सूत गोस्वामी कहते हैं, तम सार्वभूत हृदय मुनिमान थोस्मि। मैं सुखदेव गोस्वामी जो सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं वो मुनि को प्रणाम करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इनके भक्तों कुछ अलौकिक शक्ति मिल सकते, परंतु स्वयं भगवान तो नहीं है। ऐसे ही सोचना कि गुरु स्वयं भगवान वो तो महान भूल है, और ऐसे ही सोचना कि गुरु तो सामान्य व्यक्ति वो भी महान भूल। सामान्य है इसी प्रकार कि खाते है पीते सोते हैं, कभी कभी बीमार होते हैं, कभी कभी गुस्सा हो सकते, परंतु असामान्य है, क्योंकि कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पर वैसे वो असामान्य है, क्योंकि सदैव कृष्ण सेवा में तन्मय रहते हैं। और इसी प्रकार सब वैष्णव तो गुरु है, क्योंकि सब वैष्णव वैसे करते या प्रयास करते वैसे करने सततम कीर्तयन्तो माम यथंतश्च दृढव्रता। तो सब वैष्णव गुरु ही है, और विशेषकर जो भक्त जो दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं तो वैसे भक्त को गुरु जैसे मानना चाहिए। औपचारिक रूप से यदि दीक्षा प्रदान नहीं करते हैं तो यदि शिक्षा देते हैं और निस्वार्थ रूप से शिक्षा देते हैं तो गुरु जैसे मानना चाहिए। तो हमारे बीच में कहीं वरिष्ठ भक्त है, क्या कहते हैं, ऐसे बैठना नहीं, गुरुकुल छात्रों को उसे पहले वो कैसे बैठते हैं ऐसे सिखाना। किमा सीता प्रजग, वो श्लोक क्या है, स्थित प्रज्ञा सखा भाषा समाधि केशव स्थिति किंग प्रभाषित किम आसीत, कैसे बैठते हैं, ऐसे बैठना नहीं। तो हमारे बीच में कोई है भक्त जो दूसरों को शिक्षा देते हैं और उनके समय देते हैं नवीन भक्तों को, ये सब बातें समझाने के लिए, तो वे भी गुरु जैसे मानना चाहिए। दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है। तो यहाँ पर ये श्रवण कीर्तन शिविर में कहीं वरिष्ठ भक्त है जो जीवन समर्पित किया भक्ति प्रचार में, तो उनका संग से आप लाभान्वित हो सकते। ऐसा नहीं सोचना कि खाली भक्ति विकास स्वामी गुरु है। सब जो आपको भक्ति शिक्षा प्रदान करते हैं निस्वार्थ रूप से, सब आपके गुरु है, ऐसा ही मानना चाहिए। तो गुरुजन क्या कहते हैं, वंदे रूप सनातनो रघु युगो श्री जीव गोपालको, क्या क्या कहते हैं वो शर गोस्वामी अष्ट का जो हम दोपहर गए हैं, वो उनका जीवन का वर्णन है। हे राधे व्रज देवी कही चलालित है, ऐसे व्रजधाम में सदैव विरह भाव से राधे कृष्ण गोपियां कहाँ कहाँ है, ऐसे विरह भाव से कीर्तन किए है। और इनके प्रथम लक्षण है कृष्णोत्कीर्तन अर्थात उच्च स्वर में कीर्तन करना। तो अभी हम संकीर्तन करेंगे, आज हम सिटी में करेंगे ने? यहाँ से हम निकलेंगे अभी, तो आप अनाउंस कीजिए, हम संकीर्तन करेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है, अद्यापि हो जय लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान है देखी बारे पाए। आज तक कुछ भाग्यवान लोग गौर लीला देखते हैं, गौर लीला जो 500 वर्ष के पहले नवद्वीप धाम पुरी धाम में प्रकट हुई, तो अभी तक कुछ भाग्यवान लोग दे सकते। ये संकीर्तन ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है। यदि हम प्रेम से कीर्तन करेंगे जरूर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर और उनके सब परिकार उपस्थित होंगे, तो अभी हम संकीर्तन करेंगे।